नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात उन भारतीयों की जिनकी जान आगजनी में चली गई। करीब 40 भारतीयों की कल कुवैत में एक 6 मंजिला इमारत में आग लगने से मौत हो गई। मौके से 90 भारतीयों को बचाया भी गया। 30 भारतीय घायल भी हुए जिनका उपचार चल रहा है। अस्पताल में जाकर भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उनका हाल जाना। जान गंवाने वाले 40 मृतकों में 21 केरल के हैं। केरल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज भी कुवैत जाएंगी। एक बड़े एनआरआई बिजनेसमैन यूसुफ अली ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया। वहीं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राहत उपायों के और साथ ही शवों को भारत लाने के लिए कुवैत पहुंचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर समीक्षा बैठक की थी। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया। अब कोशिश सिर्फ यही है कि कैसे जल्द से जल्द इनके शव परिवारों तक पहुंचाए जाएं।
धुएं से काली पड़ चुकी इस इमारत की आग में कई सपने खाक हो गए। किसी को बेटी को पढ़ाना था, किसी को देश लौटकर नए घर में जाना था और कई छोटे बच्चों को पीछे छोड़ गए हैं। इस आग में पहचान तक खो चुके तकरीबन 40 कामगारों के शव उनके परिवारों तक पहुंचाने हैं। इनमें से 21 केरल से हैं और बाकी दूसरे राज्यों से।
पीड़ित अधिकतर जल गए हैं। कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच चल रही है। भारतीय वायुसेना के विमान तैयार हैं। जैसे ही शवों की पहचान होती है उसकी जानकारी दी जाएगी और शवों को भारत लाया जाएगा। जो ताजा जानकारी हमें कल रात मिली है उसके हिसाब से 48-49 लोगों के हताहत होने की जानकारी है, जिसमें से 42-43 हमारे देश के लोग हैं।
कई घायलों को तो इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन कई और अब भी अलग अलग अस्पतालों में हैं। कुवैत में अब नगर निगमों को आदेश दिए गए हैं कि इमारतों की जांच हो और जहां भी नियमों के खिलाफ कुछ मिले तो फौरन कार्रवाई हो। ये भी कहा गया है कि इस बात की भी जांच हो कि जिन इमारतों में कामगार रह रहे हैं वहां पर तय सीमा से ज्यादा लोग तो नहीं है और सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुवैत जैसे देश में विदेशी कामगारों के रहने के इंतजाम बेहतर क्यों नहीं है? कामगारों की सुरक्षा से समझौता क्यों हो रहा था? क्या भारत सरकार को बाहर काम करने जाने वालों के लिए नए नियम बनाने चाहिए और ऐसे देशों की सरकारों से बात कर बेहतर इंतजाम की कोशिश नहीं करनी चाहिए? खाड़ी के देशों में काम करने के लिए जाने वालों की पहले से ही कई शिकायतें रही हैं। इस बड़े हादसे ने कई परिवारों पर दुखों के पहाड़ ढा दिए हैं, लेकिन क्या अब भी हालात बदलेंगे? दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और हमारे साथ बात करने के लिए राजपाल त्यागी कारोबारी हैं, कुवैत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद त्यागी जी जुड़ने के लिए। आप वहां पर मौजूद हैं, ये इतना भयानक भयावह हादसा हो गया है, क्या जानकारी आप वहां से हमें दे सकते हैं? समय क्या स्थितियां हैं वहां पर?
सबसे पहले तो एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही दुखद घटना है कि जितने भी लोग, वो करीब 42-43 जिनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में, उन सबको मेरी तरफ से, मेरे साथियों की और जितने भी हम इंडियंस यहाँ कुवैत में रहते हैं सबकी ओर से श्रद्धांजलि, और जो उनके परिवार हैं हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत ही खेद की बात है। और ये एक कुवैत में एक जगह जो सेंट्रल कुवैत है, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर जगह है, उस सोसाइटी या कॉलोनी का नाम है मंगव। वहां पर एक बिल्डिंग में ये दुर्घटना हुई है और ये एक कंपनी है नासिर अल बद्दा कंपनी, और जो ऑयल, गैस और वाटर और एनर्जी में बहुत ही एक्टिव हैं। इनके पास बहुत सारी वर्क और लेबर फोर्सेस हैं। तो ये वहां पर सुबह के समय करीब 3:30-4 बजे ये दुर्घटना हुई है और इस चीज का पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना का कारण क्या है। क्या कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है, कोई कुकिंग है या कोई अन्य कारण है? तो उस विषय में बातचीत चल रही है। और जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं, जिसमें भारतीय राजदूतावास बहुत एक्टिव है, मैं यहाँ के जो एम्बेसडर हैं श्री डॉक्टर आदर्श स्वेका, उनको पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। एम्बेसी और उनका पूरा स्टाफ कल से 24 घंटे से पूरी तरीके से उस कार्य में लगा हुआ है और उनको अटेंड कर रहे हैं। बाकी अभी तो यही खबर है, कुछ लोग अस्पताल में भी हैं और उनकी सहायता की जा रही है। दूसरे जितनी यहाँ की इंडियन कम्युनिटी है उसकी अलग अलग बहुत सारी एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने अपनी ओर से भी कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई सहायता की आवश्यकता है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। पहले भी हम कोरोना के समय इस तरीके की कुछ दुर्घटना के समय में अपनी ये सब सहायता दे चुके हैं और भारतीय दूतावास के कोऑर्डिनेशन में हम हमेशा कार्यरत रहे हैं। और अभी भी हमने भारतीय राजदूतावास को ये अपना प्रपोजल भेजा है कि अगर कुछ भी सहायता पूरी भारतीय समाज जो यहाँ जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है करीब वो 10 लाख लोग रहते हैं, उनकी तरफ से अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता है हम लोग अपनी तरफ से पूरी सहायता करेंगे। लेकिन इस समय सबसे पहले हम लोग जो लोग अस्पताल में हैं उनकी उनकी जो प्रॉब्लम है या बीमारी है या जो उनके घाव हैं उनको ठीक करने की ओर हमारा पहला प्रयत्न है।
बिल्कुल, आप त्यागी जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एक शाहरुख भी जुड़ गए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। शाहरुख, बहुत दुखद जानकारी मिली कि आपके भाई नहीं रहे और आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं उनका शव आ जाए, शायद उसमें कुछ मुश्किल आ रही है आपको, थोड़ा बताइए क्या क्या स्थिति है इस समय, क्या आपको जानकारी मिल रही है?
मैं एचआर को एनवीटीसी एचआर को आज 11 AM को कॉल करा तो उन्हें कंफर्म किए कि ये आपका जो भाई है कालू खां फ्रॉम दरभंगा बिहार, उनका डेथ हो गया है और आपको 2 से 3 दिन लगेगा प्रोसेस होने में, ऐसा वो बोले। मैं उनको पूछा कि आपने लिस्ट क्यों नहीं जारी किया, लिस्ट में तो नाम है नहीं हमारे भाई का, तो कह रहे कि नो इन्फॉर्मेशन ऐसा बोल कर, तो बोले नहीं आप लिस्ट अपडेटेड नहीं होगा, नो इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे भाई का डेथ हो चुका है, ऐसा बोले उन्होंने।
तो आप ये बता रहे हैं, हमारे साथ राजपाल त्यागी जी कुवैत से जुड़े हुए हैं जो मदद करने के लिए, जो इंडियन फ्रेटर्निटी वहाँ पर है मदद करेंगे। तो आपने बताया कि आपको जो मुश्किल आ रही है जिस तरह से लाने में, तो उसके लिए क्या आगे क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं?
मैं हमारे कुछ रिलेटिव हैं दूर के, उनको एनवीटीसी के ऑफिस हेड ऑफिस को भेजे, उन लोग ऑफिस के लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे जो भी है हमारे लोग उनका बॉड फेस दिखाओ, उन लोग अभी तक फेस नहीं दिखा रहे, बोला दिखाएंगे दिखाएंगे ऐसा करके बोल रहे हैं, तो अभी तक वो लोग कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स दे रहे और कुछ भी नहीं दिखा रहे, उन लोग उधर ही बैठे हुए हैं देखने के लिए कंफर्म करने के लिए, लेकिन लोग कुछ भी नहीं दिखा रहे।
राजपाल त्यागी जी, आपने सुना ये एक शख्स है इनको जो मुश्किल सामने आ रही है, किस तरह से इसको हल किया जा सकता है? जी सर,
मैं आपके माध्यम से और NDTV इंडिया के माध्यम से इनको अपना मोबाइल नंबर भी इस चैनल के द्वारा देना चाहता हूं, 9960-8118, ये मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ काफी संख्या में और बहुत सारे मित्र और बहुत सारे बिजनेसमैन और इंडियन कम्युनिटी के काफी सारे लीडर्स हैं और भारतीय राजदूतावास भी बेसिकली हमारे साथ कनेक्टेड है, तो ये मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिस प्रकार की इनकी कोई भी समस्या होगी हम उसको लीगल वे में जो भी समाधान होगा या संभव हो सकता है, अगर कोई फाइनेंशियल होगा, कोई बॉडी को ले जाना होगा या एयरलाइंस या हॉस्पिटल की कोई मेडिकेशन है, उस सब की सहायता करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर शायद जो इनके नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ कुवैत के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उनको अबाइड करते हुए इनकी हर एक मदद करने के लिए तत्पर हैं।
बिल्कुल शाहरुख, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना राजपाल जी ने अपना नंबर भी दिया है, वो नंबर आप प्रयोग कर मदद ले भी सकते हैं, घर में वापस और कौन कौन था, थोड़ा बताइए क्या आपकी बात हुई थी, कब बात हुई थी भाई से आखिर में?
मैम, मेरी बात भाई से मंगलवार को हुई थी, 9 PM रात को हुई थी बात उनकी, वो नेक्स्ट मंथ आने वाले थे मैम, 5 जुलाई को उनकी टिकट है और हमने डिसाइड किया था कि 22 और 25 के बीच में उनका निकाह शादी का हमने डिसाइड किया था सारा, कि वो आ रहे थे बस शादी के लिए ही। और उन्होंने क्या बोले कि मैं सुबह में कॉल करता आपको, बुधवार को कॉल करता सुबह में, कुछ काम है तो वो कुछ काम करवाना था हमारे को, बोले सुबह में मैं आपको बताता। फिर मैं 10 बजे कॉल करा और अम्मी भी हमारी कॉल की, कंडीशनली उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा। मैं ऑफिस पे था, सडनली मैं 3 बजे लिंक्डइन ओपन करा और टाइम्स ऑफ इंडिया का पोस्ट देखा कि कुवैत में 44 लोग डेथ हो गए इंडियन के, और मैं कॉल करना स्टार्ट करा भाई को। फिर मुझे लगा कि जरूर कुछ उधर ही हुआ होगा। फिर मैं उनके साथ में जो रहते थे लोग वो गांव को आ गए, मैं उनको कॉल करा कि आपको कुछ मालूम है? सब लड़ने कुछ भी नहीं मालूम है। वो बोले कि ठीक है मैं उधर कॉल करता लोगों को। फिर वो
बहुत दुखद शाहरुख जो आप बता रहे हैं कि आपके भाई का निकाह होने वाला था अगले महीने, वो इसलिए आने वाले थे लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन क्या वो और बताते थे जो आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, कितने सारे लोग वहाँ पे रह रहे थे, एक साथ
हाँ
इतने लोगों की जान गई है, क्या कुछ बताते थे अपने बारे में?
मैं अनस्टेबल नेटवर्क था, प्लीज अभी वापस से बोले।
जी, मैं सवाल ये आपसे ये कर रही हूँ कि आपसे जब बात होती थी क्या बताते थे अपने रहने के तरीके के बारे में? क्या ठीक से रहने के लिए जगह थी उनके पास? कोई मुश्किल तो नहीं थी?
वो 5 to 7 years से रह रहे उधर को, लेकिन ऐसा कुछ भी कभी शेयर नहीं करे कि जहाँ प्रॉब्लम है रहने का ऐसा वैसा।
ठीक है, बहुत बहुत दुखद जो आपने बताया। त्यागी जी, आपने सुना किस तरह से ये युवा एक थे जिनका निकाह होने वाला था लेकिन वो अब नहीं रहे, आप थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोग, 40 भारतीय इस तरह से इनकी जान चली गई है, बहुत बेचैनी भरी स्थिति है ये। क्या हुआ होगा,
जी
यही सवाल है मन में। जी
जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद घटना है, ये तो हमारे देशवासी हैं, तो हमारे भाई जैसे हैं। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और इनके जो लेबर कैंप हैं वो बहुत अच्छे व्यवस्थित हैं, और इनके यहाँ खाने का भी जो अरेंजमेंट है वो काफी अच्छा था। लेकिन एक्सीडेंट हैपेंस, जो मुझे अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। सारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत दुखी हैं, और हमारे जो राज्य मंत्री हैं भारत के, जो विदेश विभाग के, वो
जी
कुवैत पहुंच रहे हैं, और वो यहाँ की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलके इस क्रिया में जितनी तत्परता बरस हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो भारतीय राजदूतावास है वो बहुत एक्टिव है, एंड दे आर वेरी मच प्रो फॉर द इंडियन कम्युनिटी, पर्टिकुलरली द द डिपार्ट और द पीपल विद द ब्लू ब्लू कॉलर, जो साइट पे ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो उनकी हेल्प करने की पूरी सहायता की जा रही है। पहले भी होती थी, और मुझे ऐसा विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे सारे देशवासी जो यहाँ पर रहते हैं, वो भी, हमारी गवर्नमेंट भी और हमारा भारतीय दूतावास भी, सब इसमें पूरी सहायता करेंगे। तो शाहरुख भाई, मैं आपको यही कह सकता हूँ, आपको किसी भी तरीके की अगर कोई मुश्किल आए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर बताया है। आप कभी भी हमारे साथ, कोई मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे हमारे भारतीय लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो सब आपकी मदद करने के लिए इस समय तत्पर हैं और तैयार हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, और शाहरुख
साहब से
आपका
ये
भी।
कि जल्द से जल्द मेरे को भाई का बॉडी आप यहाँ पहुंचा दे जल्द से जल्द, क्योंकि मालूम नहीं सब लोग घर
जी
पर बहुत
बिल्कुल
ज्यादा परेशान है, और ज्यादा दिन वेट करा तो मे बी पॉसिबिलिटी किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए क्योंकि।
नहीं, आप हौसला बनाए रखें। शाहरुख, आप
शाहरुख,
हौसला।
हमें
जी
हमें खुद भी बहुत दुख है, आपके भाई या आप जैसे जो भाई के और जितने लोग थे, सभी की ओर से हम, और एक बार उन सब लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम यही कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को शक्ति दे कि आप इतना जो दुखद स्थिति है इसको आप संभाल सके।
बिल्कुल शाहरुख, हौसला बनाए रखें।
अभी सर जाकर मुझे तसल्ली मिली थोड़ी। मैं कल से ट्वीट करा, आई थिंक मोर देन 100 ट्वीट करा, लेकिन किसी का भी रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा, एटलीस्ट झूठे ही थे, दिलासा दे रहे थे लोग, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे।
नहीं, अब आपको सर त्यागी जी अपना नंबर एक बारी फिर से, आपने नोट कर लिया है ना शाहरुख नंबर को?
नहीं, मैम मैंने नोट किया।
ठीक है, हम आपको, मैं अपने उनसे दोबारा भिजवा देती हूँ नंबर लेकर, फोन में भिजवाते हैं। जी
मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 9960811 8, ये कुवैत का नंबर है। अगर कोई इंडिया से कॉल करना चाहेंगे तो उसमें 00965 एज अ कंट्री कोड ऐड किए, और अगर कुवैत से कॉल करना चाहेंगे तो जो नंबर मैंने 8 अक्षरों का दिया है उसी को आप यूज कर सकते हैं।
त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शाहरुख आपको बस सिर्फ यही कह सकती हूँ कि हौसला बनाए रखिए और जल्द से जल्द जो परिजनों का शव वहाँ पर है, पार्थिव शव है, उसको देश लाए जाने की पूरी कोशिश वहाँ के जो भारतीय वहाँ पर भी हो रही है, जो राजदूत हैं वहाँ से हो रही है, और साथ ही सरकारें भी लगी हुई हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार केरल की। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, बने रहिए देश की बात के साथ। जम्मू कश्मीर की आतंकी हमले के बाद रियासी में बड़ी कार्रवाई में 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में जिस सफलता से चुनाव हुए, बड़ी तादाद में लोगों ने मतदान किया, उसे आतंकी संगठन बताया जा रहा है। बौखला गए 3 दिन के अंदर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच 4 मुठभेड़ हो गई हैं। ताज़ा मुठभेड़ डोडा जिले में हुई। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 आतंकवादियों का एक समूह डोडा के ऊंचे इलाकों में मौजूद था। इस इलाके में उनकी तलाश करना काफी चुनौतीपूर्ण है, फिर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। पुलिस को आशंका है कि आतंकी जिले के भद्रवा, थाथरी और गंडोह के ऊपरी इलाकों में मौजूद हैं। इन आतंकियों में से हर एक के बारे में सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। साल भर पहले मध्य प्रदेश सरकार का दावा था कि हर गांव, हर खेत तक मिट्टी परीक्षण जांच प्रयोगशाला के लिए एम्बुलेंस जाएगी। एम्बुलेंस तो छोड़िए, सालों पहले करोड़ों के खर्च के बने लैब्स बेकार पड़े हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने लगभग 200% सॉयल हेल्थ कार्ड बना दिए हैं। जरा सोचिए, आपका ATM क्या किसी काम का होगा जब बैंक में पैसे ही ना हो? तो सरकारी दावों और किसानों से किए गए वादों के बीच देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट।
कृषि विज्ञान केंद्र में हम आए हैं यहाँ की प्रयोगशाला का रियलिटी चेक करने के लिए। प्रयोगशाला में अगर हम देखें तो इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ नजर हमें नहीं आ रहे हैं। यहाँ ना सॉइल साइंटिस्ट हैं और ना ही उसको लेकर के कोई प्रयोगशाला है।
जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच की जाती है? आप सैंपल
नहीं की आज तक नहीं की।
34,95,000 रुपए की लागत से ये प्रयोगशाला को बनाया गया है। पिछले 8 सालों से ना तो यहाँ पर कोई स्टाफ है।
बिल्डिंग बना दी गई है 30 से 35 लाख रुपए में, लेकिन स्टाफ के अभाव में उन बिल्डिंगों में ताला पड़ा हुआ है।
किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति न होने की वजह से ये जो सामान है, जो मशीनें हैं, वो सड़ रही हैं।
सरकार की मंशा पे पूरा पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं।
एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं गलती कहाँ खा रही है।
मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों से आई तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि कैसे राज्य के 313 विकास खंडों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बनाए गए 263 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं धूल खा रही हैं।
2015 में केंद्र सरकार ने मिट्टी की सेहत और उसमें पोषक तत्वों की जांच के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए। मध्य प्रदेश में भी मिट्टी के परीक्षण के लिए 250 से अधिक लैब बने, लेकिन अब देखिए उनकी हालत क्या है।
अशोकनगर में मिट्टी परीक्षण के लिए आई मशीनें 2020 से ब्लॉक मुख्यालय में कृषि विभाग के दफ्तर में जस की तस पेटी पैक है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं। अशोकनगर जिले में एक लैब चालू है, लेकिन मुंगावली, चंदेरी, ईशागढ़ में सब मिट्टी में। सालों पहले बने लैब टूटने लगे हैं, ऐसे में किसान पूछ रहे हैं सॉयल हेल्थ कार्ड किस काम के। शिवपुरी जिले में एकमात्र लैब है, लेकिन स्टाफ की कमी से काम धीमा है। किसान कहते हैं पहले सैंपल नहीं लिया जाता, सैंपल ले भी लें तो रिपोर्ट नहीं मिलती। मिट्टी के लिए जरूरी है 18 से ज्यादा पोषक तत्व, लेकिन लैब में जांचे जाते हैं सिर्फ 8।
प्रयोगशाला नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक ऑटोमेटिक छोटी सी इकाई है, लघु इकाई जिसको बोलते हैं, वो भी सिर्फ सॉइल के लिए है। जो भी विश्वविद्यालय स्तर से इसका फंड या जो लेबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट करने की प्रक्रिया है वो वहीं से निर्धारित होती है। हमारे स्तर पर इस प्रकार की कोई लेबोरेटरी नहीं मिलती है।
नहीं की आज तक नहीं की।
सैंपल लेके जाते हैं तो क्या करते हैं?
वो फेंक देते आज तक, मतलब एक बार ब्लॉक पर देखे आए थे सैंपल, तो वहाँ से कोई रसीद ही नहीं मिली।
ना रसीद मिली, ना सैंपल का कोई रिपोर्ट मिली।
कोई रिपोर्ट नहीं मिली।
वे जाते ही नहीं है, दो बेर बोल गए थे और वे कह रहे आएंगे, वो आते ही नहीं है।
और आप भी तो लेके जाते हो ना सैंपल, अपनी मट्टी का सैंपल लेके जाते।
कोई जांच का वाका उदाहरण नहीं दिया, कुछ रख ले मट्टी के जांच भेज देंगे और कोई जवाब नहीं है।
कभी जांच रिपोर्ट आई? आपने जांच कराई मट्टी की?
जांच एक बार कराई, लेके पहुंचे थे, कोई जांच नहीं आई।
लेके सैंपल लेके पहुंचे तब भी जांच नहीं कराई? किस गांव से हैं आप?
चिटोरा से।
शिवपुरी जिले में 5 लाख से ज्यादा किसान है। मिट्टी जांचने के लिए एक कमरे की लैब जिसमें सैंपल भरे रखे हैं, लेकिन उन्हें जांचने नाम मात्र के लिए स्टाफ की नियुक्ति।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मंडी में बनी थी, तो उनका संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और उनकी हैंडओवर कर दी गई है, पुरानी मंडी में बनी हुई।
यहाँ नहीं है, मतलब नई मंडी जो बनाई गई है उस मंडी, पुरानी मंडी में?
पुरानी मंडी में।
खरगोन में 8 साल पहले 35 लाख रुपए की लागत से लैब बना, लेकिन न संसाधन है न स्टाफ। जर्जर हो रही बिल्डिंग की हालत देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ से मिट्टी को क्या इलाज मिलेगा।
मिनी लॉटरी के माध्यम से इस लॉटरी में जो है किसानों के सैंपल किए गए थे, परंतु कम सैंपल आने से जिले की जो लॉटरी है उसी में किसानों के सैंपल हम लोग जो है टेस्ट कराते हैं और परिणाम पत्र उनको पहुँचाते हैं।
मिट्टी का परीक्षण करवाया?
नहीं करवाया।
हलवा के अंदर प्रयोगशाला है ये मालूम है आपको?
नहीं मालूम,
किसी ने बताया?
छतरपुर जिले के 7 ब्लॉकों में मिट्टी परीक्षण के लैब बनकर तैयार हैं, बस पूरी तरह खुले नहीं हैं। वजह वही, टेक्नीशियन और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं।
जो हमारी 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं सभी विकास खंडों के कृषि उपज मंडी परिसर में, उनमें चूंकि स्टाफ नहीं है इस कारण से वो संचालित नहीं हो पा रहे, और उसके लिए इस वर्ष हमने प्रयास किया है कि जो हमको नवीन 22 कृषि विस्तार अधिकारी यहाँ पोस्ट हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के माध्यम से इस बार हम उनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री का जिला सीहोर, यहाँ 1,20,00,000 की लागत से मिट्टी प्रयोगक्षण प्रयोगशाला बनी, बस किसानों के किसी काम की नहीं। कई ब्लॉकों में ताला लगा है, जो खुला है वो है जिला मुख्यालय का लैब। इछावर, आष्टा, भैरुंदा और बुधनी के मंडी प्रांगण में तो ये लैब शोपीस है। वजह वही, स्टाफ नहीं। हर प्रयोगशाला में कम से कम 10 लोगों का स्टाफ जरूरी है, लेकिन यहाँ लैब टेक्नीशियन तक नहीं।
अभी चूंकि स्टाफ की कमी भी है, तो हमारा जो विकासखंड स्तर पर जो और भी टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन मिनी लैब के माध्यम से हम जो वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ है फील्ड का, उससे बाकी का एनालिसिस करवा लेते।
उमरिया में 1,50,000 से अधिक किसान परिवार हैं, करीब 1,00,000 खरीफ का और 60,000 रवि की फसलों का रकबा है। मिट्टी परीक्षण के लिए उमरिया पाली और मानपुर में लैब बने, उमरिया में चालू है, दूसरी बंद। शहडोल जिला मुख्यालय में लैब है, जरूरी सामान भी, बस 7 लोगों का स्टाफ स्वीकृत है, सिर्फ 2, एक मृदा प्रभारी और एक लैब टेक्नीशियन। साल भर में 12,000 सैंपल जांचने का लक्ष्य है, हुए हैं सिर्फ 1,500।
स्टाफ तो यहाँ तो मात्र दो लोग हैं हम लोग, और यहाँ कम से कम 6 से 7 लोगों की आवश्यकता है। 3 सहायक टेक्नीशियन चाहिए, 1 ऑफिस वर्क के लिए, 1 लिपिक चाहिए, 1 प्यून चाहिए, और जिसकी जो है यहाँ कमी है, हम दो लोगों को ही करना पड़ता है। ऑफिस का भी आजकल तो ऑनलाइन इतना काम हो गया है कि उसको पूरा डाटा यहाँ से निकालने के बाद हमको कंप्यूटर में भी उसको ऑनलाइन फीडिंग करना पड़ता है, तब फिर वो जो है पोर्टल पर पोर्टल बने हुए हैं उसमें दर्ज होता है, सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर हमको एंट्री करना पड़ता है।
टीकमगढ़ में 2 लाख किसानों के खेतों की मिट्टी जांचने हर ब्लॉक में लैब बना, लेकिन किसान कहते हैं एक तो स्टाफ कम है, जो हैं वो वक्त पर बैठते नहीं।
अब लैब का तो ऐसा है भाई साहब के अपन परीक्षण कराने जाओ मिट्टी का तो वहाँ पे कोई मिलता नहीं है, लैब सारे बंद रहते हैं।
तो फिर कैसी उन्नत फसलें ले पाते हैं आप लोग?
तो अब लैब बंद ही रहते हैं, अपने यहाँ परीक्षण हो नहीं पाता है, वजह से अपन को बीज की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है।
काय को होता है सर, वहाँ पे जाते तो लैब बंद रहता है, ताले डले रहते हैं वहाँ पे।
कितनी बार गए आप?
मैं कई 3-4 बार हो गया।
तो परीक्षण नहीं होता है
अभी, कहाँ हुआ सर?
फिर कैसे आप लोग फसलों उगाते हो?
पता ही नहीं पड़ता तमाम फसलें को कैसे होगा।
शोपुर जिला मुख्यालय में लैब है, जहां 1 लैब टेक्नीशियन लैब के साथ विभाग के प्रशासनिक काम को भी देखता है। जिले के विजयपुर और कराहल में लाखों की बिल्डिंग में ताला पड़ा है। करीब 5 लाख की आबादी वाले जिले में सिर्फ जिला मुख्यालय में जांच हो रही है, वो भी सिर्फ कहने के लिए। मैहर जिले के 3 ब्लॉक मुख्यालय मैहर, अमरपाटन और रामनगर में मिट्टी परीक्षण लैब में ताला जड़ा है। खुला भी रहता तो क्या ही होता, न मशीन न स्टाफ। मिट्टी की बात यूं ही नहीं निकली। सरकार का दावा है कि राज्य में मिट्टी की सेहत जांचने 6,31,437 सॉयल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य था, उसने बना दिए 11,89,505, यानी 188.38% ज्यादा। हमें जमीनी हकीकत मालूम थी, इसलिए सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया।
मृदा परीक्षण के लिए जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनते हैं वो 188% बन गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं।
एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं गलती कहाँ सारी।
वैसे केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में 2023-24 में 12,46,700 टेस्ट होने थे, 5,58,489 सैंपल इकट्ठा हुए, 2,60,484 टेस्ट पूरे हुए। पहले देश की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी थी, 90 के दशक में पोटेशियम और सल्फर, अब हमारी मिट्टी में जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी है। लेकिन शायद ही किसी किसान को पता लग पाता है आखिर उसकी मिट्टी में कमी है तो क्या। मिट्टी की 1 इंच परत बनने में 200 साल लग जाते हैं। हमारा सारा भोजन मिट्टी से ही बनता है, लेकिन उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेती के गलत तरीकों से हमारे भोजन की थाली प्रभावित हुई है। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से नाइट्रोजन साइकिल प्रभावित हुआ है। सरकार उर्वरकों पर लाखों करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसान को ये तक नहीं पता कि उसकी इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। यानी इस लापरवाही से हमारा, आपका, किसान और देश सबका नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।
तो हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना हो रहे हैं, और इस समिट में होने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना था कि भारत और ग्लोबल साउथ के बीच के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिट में वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ा एक बेहतर अवसर होता है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आउटरीच सेशन में शामिल होंगे, और साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों, जापान के राष्ट्रपति फुमिदो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी होंगे। लगातार 3री बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेश यात्रा होगी। प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और एनएसएजी डोभाल भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में पानी के संकट के बीच आज दिल्ली को तब एक बड़ा झटका लगा जब हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो पानी दिल्ली को मिल रहा है वहीं टैंकर से चोरी ना हो जाए, इसलिए दिल्ली में अब नहर की निगरानी के लिए भी पुलिस तैनात कर दी गई है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में मुनक नहर पर पानी की पहरेदारी में जुटी है दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली को जो पानी मिलता है उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा के रास्ते इसी नहर से आता है। दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी के पानी पर निर्भर हैं। यहां पर टैंकर माफिया के सक्रिय होने की और नहर से पानी चुराने की बात सामने आ रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जिसके बाद LG ने दिल्ली पुलिस को टैंकर से पानी चोरी रोकने के निर्देश दिए और बुधवार रात से ही नहर के पानी की निगरानी के लिए दिल्ली के 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई।
हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है यहाँ से शुरू होके, तो हर जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो।
वही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों को तब निराशा हाथ लगी जब हिमाचल प्रदेश ने साफ कर दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि पहले उसने हामी भरी थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश ने लिखित में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है, जबकि हिमाचल के वकील ने मौखिक तौर पर कहा कि वो पानी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के ऐसे रुख पर फटकार लगाई, पूछा आपके खिलाफ क्यों ना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश ने अपने हलफनामे में गलती के लिए माफी मांगी और दूसरा हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यों के वाटर शेयर एग्रीमेंट मामलों का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो इस मामले में कोई राय नहीं बना सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार को बैठक बुलाए और मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी देने पर जल्द से जल्द फैसला करे।
तो पानी की पूरी पूरी किल्लत है, पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम पे आ रहा है, लेकिन कब आता है कब नहीं आता। और अगर ये प्याऊ ना हो तो कम से कम हजारों आदमी इस प्याऊ से पानी अपना पीते भी हैं, और प्लस ये पीछे की लाइन में जो पानी जो बड़ी बोतलें पड़ी हैं इन बोतलों के माध्यम से लोग घर में भर के लेके जाते हैं जिससे लोगों की प्यास भुगती है।
कैसे चल रहा
है? मेरे यहाँ पानी की स्थिति बहुत खराब है। पहले तो पानी ठीक आता था, लेकिन अब 2 महीने से जो है पानी में बहुत ज्यादा परेशानी कर रखा है। क्योंकि पहले सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता था और पानी का टाइम भी अच्छा था, 1.5-2 घंटे पानी आता था।
अच्छा।
अब पानी सुबह या शाम में से 1 टाइम आता है और ये भी नहीं पता कि सुबह आएगा या शाम को आएगा।
सब कुछ मौसम पर निर्भर है। बेतहाशा गर्मी का मौसम है, इसलिए कोई भी राज्य दूसरे राज्य को एक बूंद अतिरिक्त पानी देने को तैयार नहीं हो रहा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बरसात आने दीजिए और फिर देखिएगा कि कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य का अतिरिक्त पानी लेने को तैयार नहीं होगा। सब वक्त और मौसम की बात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।